ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथ प्रथम अध्याय। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयशः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मान् तानि नो वद शृण्वताम् यज्ञस्मिन्नन्तरे ब्रह्मान् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीतेन गतेद्य वा। ऋषिर्वाच मनवोऽस्मिन् व्यतीता सत् कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः आकृत्यां देवहूत्यां वै आकृत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनः धर्मज्ञानोपदेशार्थम् भगवान् कुत्रताम् गतः कृतम् पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यासे भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। राजोवाच महाराज परीक्षित ने कहा स्वयंभुवस्य स्वयंभु श्री ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज के इहा इस स्थान में गुरु हे गुरुदेव वंशः वंश अयम यह सुप्रसिद्ध विस्तरात विस्तार से श्रुतः सुना गया यत्रा जिस स्वयं हुए मनवंतर में विश्व सृजाम विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि के सर्गः पुत्र पौत्र आदि का मनोन मनु के विषय में अन्यान अन्य मनु बदस्व बोलिए नह स्माकम हमारे लिए इस श्रीमद् भागवतम कथा में पधारे हुए आप सबका स्वागत है। और भगवान श्री कृष्ण सबके चित्त को अपने में समाहित रखें यही प्रार्थना है। यहाँ पर सबसे पहले सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, नैविशरण में वे महाराज परीक्षित के साथ कथा सुने थे गंगा जी के तट पर। वे जानते हैं कि महाराज परीक्षित ने क्या पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, दोनों को बोलते जाते हैं। यहाँ पर वे बोल रहे हैं, राजो आचा महाराज परीक्षित ने पूछा, राजा उवाच राजो वाच राजा ने पूछा। उवाच का अर्थ है कहना, राजो वाच राजा बोले, हे गुरु, हे ज्ञानदाता, हे सर्वश्रेष्ठ, आपने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार से वर्णन किया और हमने सुना, कृपा करके आप अन्य मनुओं के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ये माइक ठीक बोल नहीं रहा है ना, भाव भाव कर रहा है, ठीक करना चाहिए ना, इसकी तैयारी करके आपके में पढ़ गूंज रहा है, ठीक कर उसको। कथा का अक्सर लगता है कि अपना कुछ आलाप ले रहा है। आठवें स्कंध में मनवंतर का वर्णन किया गया है, मनु अंतर मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु महाराज का शासन काल लगभग 71 चतुर्युग रहता है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष का होता है। सत्य त्रेता द्वापर और कली ये चार युग हैं। जब एक बार दिखते हैं तो इसको चतुर्युग कहा जाता है, चतुर्युग। तो इस प्रकार से 71 बार ये चतुर्युग बीतते हैं तब मनु महाराज का पद बदलता है, दूसरे मनु बनते हैं। तो एक प्रकार की ब्रह्मांड की सरकार है जो ब्रह्मा जी के द्वारा सिलेक्शन से बनती है। ब्रह्मा जी स्वयं सेलेक्ट करते हैं, इलेक्शन नहीं होता है इस ब्रह्मांड की सरकार में, सिलेक्शन होता है। बहुत विशिष्ट लोगों को इन बड़े बड़े पदों पर किया जाता है। मनवंतर के 6 अंग हैं, एक तो है मनु महाराज और दूसरा मनु महाराज के पुत्रगण और तीसरा इंद्र और इसके साथ ही साथ इंद्र के सहयोगी देवगण, 4 हुए और 7 ऋषि जिनको सप्तर्षि कहते हैं। 5 और 6 भगवान का एक अवतार होता है मनु महाराज के सरकार की सुरक्षा के लिए, जिसको मनवंतर अवतार कहा। तो मनवंतर के 6 डिपार्टमेंट है, अंग है। महाराज मनु के स्वयंभू मनु के जो ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं, उनके शासन का या उनके वंश का वर्णन किया गया है तृतीय स्कंध में, विस्तार से वर्णन है। महाराज परीक्षित अब अन्य मनुओं के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। किसी भक्त के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि महाराज परीक्षित जो भगवान कृष्ण के इतने अनन्य महान भक्त हैं, वे मनवंतर के विषय में क्यों सुनना चाहते हैं। कोई प्रश्न हो सकता है मन में, लेकिन महाराज परीक्षित की जो स्थिति है और सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता हैं, इसको देख करके स्वयं समझ लेना चाहिए कि महाराज परीक्षित जो मनमंत्र का वर्णन सुनना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा उनका उद्देश्य है। भागवत में कहा गया है कि मनमंत्रो सद्धर्म, सद्धर्म को ही मनमंत्र कहते हैं। सद्धर्म का मतलब है भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार उपदेश किया गया है, इसको सब धर्म कहते हैं। सज्जनों का धर्म या सच्चा धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं। तो वास्तव में मनु महाराज के द्वारा और अन्य जो मनवंतर के अंग हैं, इनके द्वारा भगवान श्रीहरि इस जगत में इस धर्म की शिक्षा देते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। जैसे गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे, जुग जुग में भगवान है धर्म की स्थापना करते हैं। मनु महाराज ही इसमें मुख्य हैं, तो इसलिए इसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतरो सब धर्म, ठीक से जनता वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करे, इस जीवन में भी सुखी रहे और इस शरीर को त्यागने के बाद वह भगवान का चरण कमल प्राप्त करे, यह एक विश्व व्यापक व्यवस्था है जिसको मनवंतर कहते हैं, सब धर्म की स्थापना के लिए, पालन के लिए। जब सब धर्म का श्रवण किया जाता है, आचरण किया जाता है, तब वासना का नाश हो जाता है, ऐसा कहा है श्रीधर स्वामी ने। मनुष्य के जीवन में अनेक कामनाएं हैं, संसार में देख ही रहे हैं चारों तरफ इतनी कामनाएं हैं, कामनाएं, इसको वासना कहते हैं। वासना प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई न कोई इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन जब भगवत प्राप्ति की इच्छा केवल रहे और अन्य सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, तो कहा जाएगा कि चित्त निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, केवल भगवान को चाह रहा है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि बिना सद्धर्म का आचरण किए वासनाएं निर्मूल नहीं होती है। जब भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्मों का ठीक ठीक व्यक्ति आचरण करता है, तब हृदय उसका शुद्ध हो जाता है। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए ये मनवंतर का वर्णन सुनना आवश्यक होता है, इसे भगवान में प्रेम बढ़ता है। महाराज परीक्षित एक तो स्वयं की शुद्धि के लिए और दूसरी बात है कि समग्र जनता की शुद्धि के लिए मनवंतर का वर्णन सुनना चाहते हैं, और विशेष करके मनवंतर में जो भगवान की लीलाएं हुई हैं या हो रही हैं या आगे होंगी, उसी को सुनना चाहते हैं। इनका प्रश्न इस तरह से है, जत्र जत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयस गृणन्ति कवयो ब्रह्म स्थाने न वद सुनवताम। हे ब्रह्मन, ब्रह्मन वेद, हे वेदज्ञ, हे सर्वज्ञ, जत्र जत्र जस्मिन जस्मिन मन्वंतरे भगवान हरे जन्म, जिस जिस मनवंतर में भगवान का जो जो जन्म हुआ है, जत्र जत्र हरे जन्म, भगवान के जन्म अवतार और कर्माणि च, अवतार लेकर के कर्माणि विविध कर्म करते हैं, भगवान महान है, महीयस महान श्री हरि के, श्री कृष्ण के मनवंतर काल में लिए गए अवतारों और कर्मों को गृणंति कवय विद्वत गण कहा करते हैं, जैसे श्री नारद जी, भगवान शिव आदि इसका वर्णन करते रहते हैं, वर्णयन्ति गृणंति कवयो ब्रह्म तानी नोबद श्रीणवता, एक सदाचार उपस्थित कर रहे हैं कि जितने भी कवि हैं, मर्मज्ञ हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं, वे लोग भगवान के अवतार कथा को और कर्मों को, लीलाओं को गृणन्ति, कहते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, ये स्वभाव होता है सज्जनों का। तानि नो पद श्रीलता, हम सब सुनने के लिए इच्छुक हैं, हमारी लालसा है, तो आप उन अवतार कथाओं को और लीला कथाओं को हमसे कहिए, हम सब लोग सुनने के लिए यहां उपस्थित और सुनने के लिए उत्कंठित है। समग्र सभा के तरफ से महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, तानि नो पद श्रीलता, हम सुनने के लिए बैठे हैं और बहुत इच्छा है, कृपा करके हमें सुनाइए भगवान के मनोन्तर में लिए गए अवतार के विषय में, और अवतार लेकर के उन्होंने जो जो लीला किया है उसे कहिए, इसको और क्लियर करें। जब जस्मिन्नंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावनः कृतवान कुरुते कर्ता यति ते न यते जवा। हे ब्राह्मण, हे भगवान, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व को जन्म देने वाले, सभी प्राणियों के को जन्म देने वाले और सबके जीवन की व्यवस्था करने वाले, सबके जीवन में विकास देने वाले श्री भगवान, जब जस्मिन् अंतरे, जिस मनोअंतर में जो जो कार्य किए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, उनको कृपया सुनाइए। त्रिकाल है, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, सब समय भगवान हैं और वे लीला करते ही रहते हैं। बहुत से अवतार ले चुके हैं, इस समय भी अनेक अवतार वो लिए हैं वर्तमान में और भविष्य में भी लेंगे। कृतवान कुरुते कर्ता, अतीते, अद्य और अनागते। अतीत कहते हैं जो समय बीत चुका है, अनादिकाल से भगवान के अनंत अवतार होते रहे हैं और उनमें से भगवान के कुछ अवतार और लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े विद्वानों ने किया है, सब तो कोई नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के लीलाओं को, उनके अवतारों को गिन करके शेष करने की इच्छा करता है, इसका मतलब यह है कि वो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन चुका है। ऐसे बोलते हैं, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं उसको गिन चुका है। इसका मतलब कि जैसे पृथ्वी के रजह कण को, परमाणुओं को गिनना असंभव है, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं को गिनना असंभव है। तो इस तरह से भाषा बोलते हैं कि अगर कोई भगवान विष्णु के गुणों को गिन करके, गा करके शेष करना चाहता है, इसका मतलब कि पृथ्वी के परमाणुओं को गिन चुका है, तब साहस कर सकता है, तभी साहस कर रहे, नहीं तो कैसे करेगा। इसका मतलब यह है कि परमाणुओं को गिनना संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के गुणों को, उनके अवतारों को, लीलाओं को गिनकर शेष कर देना संभव नहीं है। तो तीनों काल में भगवान हैं और लीला करते ही रहते हैं, भविष्यत में भी वे करेंगे ही। कई रूटीन ऐसे सेटअप किए गए हैं, अब इस प्रकार इसी स्कंध में पढ़ेंगे कि ये जो वर्तमान मन्वंतर है, सातवां मन्वंतर है इस कल्प में, ब्रह्मा जी के इस कल्प में ये सातवां है, तो छह बीत चुके और अभी सात आगे होने वाले हैं। उन सातों मन्वंतर में भगवान के कौन कौन अवतार होंगे, मन्वंतर अवतार, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है, नाम बताया है, सप्तर्षियों का नाम बताया है, इंद्र कौन होंगे इत्यादि सारी बातों को क्लियर बताया है। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जब जस्मिन् अंतरे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, जस्मिन् अंतरे जत विश्व भावना भगवान कृतवान कुरुते कर्ता, कृतवान का अर्थ है अतीते जत कृतवान, भूतकाल में जो ये कर चुके हैं, और अद्य कुरुते और इस समय कर रहे हैं, और अनागते जो अभी काल आया नहीं है, भविष्यत काल उसमें करता करिष्यति ये करेंगे। भगवान जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और आगे मनमंत्रों में जो करेंगे, उन सबको हम सुनना चाहते हैं। उससे पीछे वाले से इसका अनुमय हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिए। जब जस्मिन अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कृतवान कुरुते कर्ता यतीते अनागते देवा, ऐसी व्यवस्था है भगवान की। यदि वास्तव में कोई भगवान के बारे में सुनना चाहता है तो प्रचुर व्यवस्था है। भूतकाल में क्या क्या किए हैं वो आज भी नवीन की तरह है, इस समय कर रहे हैं और आगे मनोन्तरों में वे करेंगे। अद्य अनागते और अतीते, इन तीनों के लिए तीन क्रियापद लगा रहे हैं, कृतवान कुरुते कर्ता। कृतवान मतलब जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और कुरुते करोति वर्तमान में, और कर्ता करिष्यति करेंगे। इन सब लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। कितनी लालसा है, कितना वास्तव में प्रेम है भगवान के प्रति। महाराज परीक्षित अनशन पर बैठे हैं, पानी भी नहीं पिए हैं, और आज कौन दिन है, आठवां स्कंध है, तीसरा दिन होगा ना, चौथा दिन है, पानी भी नहीं पिए हैं, फिर भी भगवत कथा श्रवण की कितनी लालसा है। जो किए हैं, जो आगे करेंगे, इस समय करें, सब हम सुनना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है। और तीन साढ़े तीन दिन के अंदर सारी लीलाओं को कह देना ये भी संभव नहीं है, और सुनना भी संभव नहीं है। पर लालसा है, भूख इतनी है, कह रहे हैं सब सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जब जस्मिन अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना, इसको ऐसे अन्वय करेंगे, हे ब्रह्मन् विश्व भावना भगवान, जस्मिन अंतरे जत जत कृतवान कुरुते कर्ता अतीते अद्य अनागते वा तानि सर्वाणि वद, इन सबको कहिए। इस तरह से सुनने की लालसा होनी चाहिए। महाराज परीक्षित एक अद्भुत उदाहरण है, भगवान कृष्ण के विषय में सुनने की इनकी अद्भुत लालसा है। तो इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे महाराज, इसलिए यहां पर इनको ऋषि उवाचक कहा गया। ऋषि का एक अर्थ होता है ऋषि मंत्र द्रष्टा, और ऋषि का यह भी अर्थ होता है ऋषि त्रिकालज्ञ, तीनों काल की बात जाने उसको ऋषि कहते हैं। तो चूंकि तीनों काल पर प्रश्न है कि भगवान पहले क्या किए हैं, कौन कौन अवतार लिए मनमंत्र में, और इस समय या भविष्य में, इसीलिए अब इसका ही उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर वही दे सकता है जो ऋषि है। जो ऋषि नहीं है वो तो वर्तमान का भी उत्तर नहीं देगा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, अरे भगवान है कि नहीं है, कुछ गधों को तो ये भी मालूम नहीं है, फिर क्या कर रहे हैं कौन 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 जानेगा। भगवान वृंदावन में है और बांसुरी बजा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, अगर ये बात कहिए तो कुछ सचमुच ऐसे गधे हैं जो बिल्कुल नहीं मानेंगे, अरे नहीं भगवान का तो कोई रूप नहीं है, कोई ये नहीं है वो नहीं। लेकिन महाराज परीक्षित तो साफ करें, भगवान जो किए हैं पहले, इस समय जो कर रहे हैं, भविष्य में जो करेंगे, उनको बोलिए। इसका मतलब भगवान कर्म करते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, वो
करते ही रहते हैं। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि भगवान लीला करना बंद कर दे, वो करते ही रहेंगे अनंत काल तक। और जीवों का, मनुष्यों का जो भी कर्म है वो ठप हो जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, मर जाएगा, दूसरा जन्म मिलेगा, या होगा, सब बदल जाता है। लेकिन भगवान ने तीनों काल में एक समान सत्ता विशिष्ट है और पूर्ण ज्ञान में लीला करते रहते हैं। भगवान की लीला को कौन कह सकता है जो वास्तव में ऋषि है, जो वेदों के मंत्र को जानता है ठीक से, भगवान को जानता है और उनकी सर्वकालिक लीलाओं को भी जानता है, वही भगवान के बारे में कुछ बोल सकता है। भगवान के बारे में जिसको ज्ञान ठीक से नहीं हो क्या बोलेगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए यहां मैत्रेय सुख जी कह रहे हैं ऋषि हुआ, ऋषि बोले। सुखदेव गोस्वामी अपने साथ कोई भागवत लेकर नहीं घूम रहे थे, और तो और कौपीन तक रखने का झंझट नहीं था उनके पास। लेकिन भगवान के पूर्ण ज्ञाता थे, भूत भविष्य वर्तमान में भगवान की सारी लीलाओं के मर्मज्ञ, इसीलिए उनके इस गुण को देख करके सुख जी कहते ऋषि उवाच। नहीं तो श्री शुक उवाच कहते क्या हर्ग था, कहते ही है सब जगह श्री शुक उवाच, श्री बागरायणी उवाच, अब यहाँ श्री ऋषि उवाच कहा, ऋषि बोले। मनोस्मिन व्यतीता सत कल्पे स्वयं हुआ गया, हे महाराज अस्मिन कल्पे, ब्रह्मा जी के इस दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते, अस्मिन कल्पे सत मनोह व्यतीता, छह मनवंतर बीत गए इस कल्प में, स्वयं हुआ गया, जिसमें है सबसे पहले मनु है ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनको स्वयंभू मनु कहते हैं, स्वयंभू का पुत्र होने से उनको स्वयंभू मनु कहते हैं। इस समय जो मनु महाराज हैं वे हैं विवस्वान के पुत्र, विवस्वान महाराज कश्यप जी के पुत्र है और माता अदिति से जिनका जन्म है, माता अदिति के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं विवस्वान, और सबसे छोटे पुत्र हैं वामन देव। बारह भाई हैं तो उनको बारह आदित्य कहते, द्वादश आदित्य। तो विवस्वान के पुत्र हैं इस समय जो मनु है विवस्वान के पुत्र हैं, इसीलिए इनको वैवस्वत मनु कहते हैं, और पहले मनु को स्वयंभू मनु कहते हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये विवस्वान के पुत्र हैं। इनके विवस्वान मनु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं इक्ष्वाकु महाराज। इसी मनु महाराज का नाम भगवान गीता में बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम्, विवस्वान मनवे प्राह मनु रिक्षा करे प्रभु। यह मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस योग को, ज्ञान को मैं सबसे पहले विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अस्मिन कल्पे सत्य मनोह व्यतीता, अस्मिन कल्पे स्वयं हुआ दे सत्य मनोह व्यतीता, सब मनु बीत गए हैं। आद्यस्ते कथितो जत्र देवादि नाम से संभव, आद्य में तो प्रथम मनु का मैंने वर्णन किया, मनवंतर का, जिसमें देवताओं और सभी जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। देवादि नाम देवता दैत मनुष्य सबके जन्म का वर्णन किया गया है इस मनांतर में, जन्म हुआ है। आद्यस्ते कथितो जत्र देवादि नाम च संभव, तृतीय स्कंध में इस वर्णन आया हुआ है किस तरह से इस मनांतर में सृष्टि हुई, देवता आदि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा दस प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन किया गया, तो इसी मनवंतर में हुआ है। आद्यस्ते कथित, आद्य मतलब पहला मनवंतर में वर्णन कर दिया। इस मनवंतर में भगवान अवतार लिए खास मनु महाराज की दो पुत्रियों के द्वारा, आकुत्यम देहुत्यम च दुहित्रो तस्वै मनो। मनु महाराज की दो पुत्रियां, ऐसे तीन पुत्रियां हैं, आकुति देहुति प्रसूति, लेकिन आकुति और देहुति के गर्भ से साक्षात भगवान ने अवतार लिए। धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्र ताम गतः, आकुति के गर्भ से भगवान जन्म लिए यज्ञ के रूप में, और उन्होंने धर्म का उपदेश किया, वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया, और देवहूति के गर्भ से श्री भगवान जन्म लिए कपिल नाम से, तो उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया। धर्म ज्ञानोपदेशार्थम, धर्म का और ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान पुत्र ताम गतः, मनु महाराज के पुत्रियों का पुत्रत्व तो स्वीकार किए, इसका मतलब पुत्र बने। तो कृतम पूरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम, मैंने आपसे भगवान कपिल देव के विषय में, उनके उपदेश अवतार आदि के विषय में पहले वर्णन कर दिया है, पूरा मतलब पहले तृतीय स्कंध में। कृतम पूरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम, भगवान ने कपिल देव का अनुवर्णन मैंने कर दिया है। अब मैं आपसे बता रहा हूं, आख्या से भगवान यज्ञ जच्चकार कुरुद्वः, भगवान यज्ञ ने क्या किया, क्या लीला किया इस प्रथम मन्वंतर में, यह मैं कह रहा हूं। यहां तक कथा स्पष्ट रूप से आ रही है, तो पिछली बातों को समेट करके रखना चाहिए जिससे सारी बातें ठीक से समझ में आ रहे हैं। प्रथम मन्वंतर में श्री भगवान ने यज्ञ नामक अवतार लिया, मन्वंतर अवतार। तो भगवान यज्ञ ने क्या लीला किया, इसको संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आख्या से भगवान यज्ञ जच्चकार कुरुद्वः, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान यज्ञ ने जच्चकार जो किया उसने, विरक्तः काम भोगेशु शतरूपा पते प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्जो बनमा विषक। इस मन्वंतर में भगवान यज्ञ ने स्वयं मनु महाराज की रक्षा किया और अनेक दैत्यों राक्षसों का हनन करके इस मन्वंतर को सुदृढ़ किया, जगत की रक्षा किया। इसी को कहने के लिए यहां पर पहले मनु महाराज के विषय में बता रहे हैं। कौन ऐसा समय था और किस देश में मनु महाराज पर संकट आ गया था कि भगवान यज्ञ ने उनकी रक्षा किया था, इसके लिए मनु महाराज के बारे में बता रहे हैं। विरक्त काम भोगेश शतरूपा पति प्रभु, शतरूपा के पति समर्थ श्री मनु महाराज काम भोगेशु विरक्त, काम भोग से संसारिक भोगों से विरक्त थे। कुछ काल राज्य करके राज्य त्याग दिए, विसृज्य राज्यम तप से सभार्जो बनमा विषक, राज्य छोड़ दिए, अपने पुत्र को दे दिए और सभार्ज अपनी भार्जा के साथ, अपनी पत्नी के साथ तप से तपस्या के लिए वनम आविष्ट वन में चले गए। वनम आविष्ट, एक समय संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे और राज्य करने के बाद राज्य का त्याग कर दिए, अपने पुत्र को राज्य दे दिए प्रियव्रत को, और चले गए वन में। वन में गए पत्नी के साथ सब भाग जाए। उस समय की स्त्रियां भी बहुत ही अग्रसर थी अध्यात्म में भी। अगर पति वन में जा रहा है तो पत्नी भी वन में चलेगी। देखिए कितनी शिक्षा थी, कैसी ट्रेनिंग थी। उस समय लोग जीवन के उद्देश्य को क्रिया समझते थे, कि भगवान विष्णु का चरण कमल प्राप्त करना यही जीवन का परम लाभ है, जीवन इसी के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। तो सम्राट पद पर महाराज मनु थे संपूर्ण पृथ्वी के साथ साथ, फिर भी विरक्त काम भोगे से, काम भोग से विरक्त थे और वन में चले गए। विरक्त थे तो घर में ही क्यों नहीं भजन किए, ये प्रश्न होता है ना, घर पर ही भजन ये भजन करना चाहिए। आजकल जब किसी को कहा जाता है भजन कीजिए और ऐसे नियम पालन ही पालन, तो सब लोग जनक महाराज बन जाते हैं घर में, जबकि घर में अनेक प्रकार के दुख हैं, मन विक्षिप्त है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण आदमी को अपना घर ही अच्छा लगता है। इसका कारण है कि अर्जेंसी नहीं है, मन में कोई भगवान को पाने की लालसा नहीं है। तो एक आदमी बहाना मात्र कर लेता है, नहीं सबसे अच्छा घर ही है, तो ठीक है घर अच्छा है, लेकिन कब जबकि भगवान की भक्ति हो। पर फिर भी मनु महाराज तो घर पर भी परम भक्त थे। तृतीय स्कंध में लिखा गया है कि भगवान की कथा सुनने में उन्होंने अपना मनवंतर पूरा कर दिया। जब कन्यादान करके लौटे करदम जी को, तो उसके बाद नेते जी वर्णन करते हैं कि अपना पूरा मनवंतर बिता दिया भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में। यह कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, अरे जीवन जैसे जीने के लिए आदमी सांस लेने से कभी उबता नहीं है, इसी तरह से भगवान की कथा सुनने से कहने से कभी उबन नहीं होनी चाहिए, यही जीवन है। और सब पार्शियल काम है, इतना टाइम तक किए बंद करो, इतना टाइम किए बंद करो, लेकिन भगवान की कथा और कीर्तन इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। दिन रात महीना वर्ष और पूरा जीवन उसमें बीते, एक मनवंतर पूरा किया मनु महाराज ने भगवान की कथा में। इसका मतलब यह है कि ज्यादा समय वे कथा सुनने में ही रहते थे, इसका अर्थ ये है। मनवंतर यापना उनके दिन रात इस तरह से बीते थे। तो यहाँ पर उनके वैराग्य का वर्णन किया जा रहा है कि विरक्त काम भोगे सु, काम भोग से विरक्त होकर के पुत्र को राज दे करके अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और वहां तप करने लगे। किस तरह से तप, सुनंदायाम वर्षतम पदई के न भुवम स्पृशन तप्यमानस तपो घोरम इदम मनवा भारत। हे भरतवंशी परीक्षित, वहां जब गए सुनंदा नदी के तट पर, एक पैर से 100 वर्ष तक खड़े रहे, ये तपस्या। एक पैर से खड़े से पदाए के न, वो भी भुवम स्पृशन, केवल पृथ्वी का स्पर्श भर किए थे, पूरा भार देकर खड़े नहीं थे, जो अंगूठे से छू रहे थे पृथ्वी को, खड़ा होकर के भजन कर रहे थे। आज का आदमी ठीक से सो करके खा पी करके भी करे तब भी काफी है ना, खा पी करके सो या कल मंगला आरती में खड़ा हो जाए तब भी वो सिद्ध है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। कुछ लोगों की निद्रा मंगला आरती के समय ही और जोर लगाती है, वो तोड़ ही नहीं पाते हैं। देखिए तपस्या का वर्णन, जो खड़ा होकर के तप कर रहे हैं तो खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 100 वर्ष तक, वर्ष शतम पदा एक न भूम स्पृशन, वो खड़े थे और कार्य क्या कर रहे थे, इदम अन्वाह भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, यह बात बोलते थे, ये जप करते रहते थे, खड़ा थे लेकिन जप कर रहे थे, जप कर रहे थे। जैन चेते थे विश्वम, विश्वम चेते थे नजम, जो जागरते श्याम इसमें नायम तम वेद वेद स आत्मा वास निदम विश्व इत्यादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक सिद्धांत है कि आदमी चाहे सोकर भजन करे, सोया रहे चाहे खड़ा रहे, भजन क्या है? भजन है भगवान का नाम उच्चारण। अगर बेड पर सोए सोए भी बोल रहा है तो ठीक है, और नहीं खड़ा ही है और चुप है तो ठीक नहीं है। तो सो करके भी अगर जप कर रहा है तो वो बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सो करके जप करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए उसी दशा में ही करेगा तो ठीक है करे। इदम अनु आह भारत, यह बोलते रहते थे मनु महाराज की तपस्या का यह प्राण है भगवान का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निरंतर, लेकिन मान लीजिए बेड पर कोई जप चालू किया और एक माला पूरा होते होते बस माला भी छूटी और सो गया, तो इसलिए खड़ा ही करना ठीक है। कभी कभी लोग बैठ करके जप करते हैं फिर भी झपकी आने लगती है, इसलिए उपदेश किया जाता है कि खड़ा होकर कीजिए, खड़ा होकर कीजिए। खड़ा होने पर भी अगर झपकी आए, गिरने का डर हो, तो चल चल कर करना। इस तरह से मतलब एक क्या उसको कहते हैं, छूट देना, इसको कम से कम कहते हैं। ये स्टैंडर्ड का भजन तो यह है कि बैठ करके भगवान में चित लगा करके और नाम का उच्चारण किया जाए, या भागवत पढ़ा दे, कोई श्लोक पढ़ा दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तब ठीक है खड़ा होकर के कीजिए। खड़ा होकर के भी नहीं एक जगह स्थिर होकर कर सकते हैं तो टहलते हुए कीजिए, लेकिन मुख्य है भगवान के नाम का उच्चारण। अभी मैं कार से आ रहा था तो एक भक्त बताए कि कोई एक दल है भारतवर्ष में जो कहते हैं कि नहीं जप करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत किस चीज की है, आंख बंद करो और चुपचाप हो जाओ, इसी की जरूरत, ध्यान करो। ध्यान करो ये तो बहुत आसान है, कोई भी आदमी पसंद का ठीक है, तब तो इसमें आराम है, कोई परिश्रम नहीं। ध्यान करेंगे, क्या ध्यान करेंगे इसकी कोई शिक्षा नहीं है। सब स्वतंत्र है, अपने मन में जिसका भी ध्यान करें, चाहे दुकान का ध्यान करें या बस का ध्यान करें या अपने पत्नी का नक्शिक चिंतन करें या कुछ भी करें, बस आंख बंद होना चाहिए तो मान लिया जाता है कि ध्यान है। अभी बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे बस आंख बंद होने थे, आंख खुले कि बस भजन से गिर गए, और अगर बोल दिए तब तो और गायब हो गए। परंतु वास्तविक भजन जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान का नाम बोलना यही भजन है। एक जगह सिखाया जाता है कि तुम चुप रहो, आंख बंद रखो, नहीं, चुप रहने की जरूरत नहीं है। चुप रहना चाहिए उसके लिए कि फालतू बात लोग करते हैं, वहां न बोले वहां न सुने, लेकिन वास्तव में भगवान के गुणों की आवृत्ति होनी चाहिए जीवन में। तो मनु महाराज इस तरह जप कर रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, पत्नी भी जप कर रही है, दो हैं, मतलब अपनी भार्या शत्रुपा जी हैं, वो भी इसी तरह से एक पैर से खड़ी, जैसे मनु महाराज तपस्या कर रहे थे वैसे वो भी घोरम तप। घोरम का अर्थ है अन्यों के द्वारा दुष्कर, दूसरे लोग जिस तप को नहीं कर सकते हैं ऐसा कठिन तप कर रहे थे, भोजन आदि छोड़ करके और एक पैर से खड़े होकर के भगवान के गुणों का जप कर रहे थे। मनुर्वाच जेन चेतेते विश्वम विश्वम चेतेते निजम, जो जागरते सयानस्मिन नायम तम वेद वेद सह। जो विश्व के कणकण में चेतना देते हैं लेकिन भगवान को चेतना देने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो समस्त विश्व के प्रलय होने पर भी सोने पर भी जगते रहते हैं और जो संसार के सबको जानते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। ये पहले श्लोक में मनु जी कहो नयम तम वेद वेद सब, यह संसार इस संसार के सब लोग भगवान को नहीं जानते हैं, सब मिल करके एक को नहीं जानते हैं और वो अकेले सबको जानता है सब जगह। नयम वेद तम वेद वेद सब, ये भगवान की अद्भुत प्रभुता है, अद्भुत उनकी शक्ति है। जिन चेतयते विश्वम, जिन भगवता इदम विश्वम चेतयते, इस विश्व में चेतना आती है, प्रत्येक प्राणी में जो सोचने की करने की याद करने की शक्ति हो चित्त कहते चेतना कॉन्शियसनेस, वो भगवान से आती है। सब में चेतना देते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान में को होना चाहिए, परंतु सारा संसार मिलकर के भगवान में चेतना नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं चिद्रूपत्व है, वो स्वयं ही चेतन स्वरूप है, तो चेतना कोई क्या देगा। जैसे सूर्य में, जैसे सूर्य से सब लोग लाइट प्राप्त करते हैं, लेकिन सूर्य में कोई लाइट क्या देगा, वो स्वयं ही प्रकाश पुंज है, स्वयं नक्षसिक्त चेतन प्रभु है, तो उनको चेतनीभूत कोई क्या करेगा। और ये सबको चेतना देते हैं। ऐसे भी संसार में देखिए, भगवान ने जिसको जो अंग दिया है और जिस चेतना दे रहे हैं, इंद्रियों में काम करने की शक्ति दे रहे हैं, यदि भगवान के द्वारा बनाई हुई कोई इंद्रिया काम नहीं कर पाती है तो किसी भी प्रकार से उसको ओरिजिनल रूप दे पाना असंभव होता है। किसी भी इंद्रिय जिससे आंख खराब हो जाती है तो आंख को कोई बना नहीं सकता है, दूसरे की आंख को लगा दिया जाता है, आजकल ऐसा सुना जाता है, लेकिन वो आंख भी भगवान बनाए हैं, कोई मनुष्य बनाया हुआ नहीं है, है ना। मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है कि भगवान के द्वारा बनाए हुए इंद्रिय को रिप्लेस कर सके, किसी भी जीव के इंद्रिय चेतना आदि देना तो और दूर की बात है। तो इसमें मनु महाराज कहते जिन चेतयते विश्वम, जिनके द्वारा विश्व के समस्त प्राणी चेतना प्राप्त करते हैं और सब मिलकर जिनको चेतना नहीं दे सकते, यो जागृति स्वयं इस जगत के सोने पर या प्रलय काल में वो जगता रहता है। ऐसे भगवान तो सब समय जगते रहते हैं, जगने का अर्थ है कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन संसार सोता रहता है, भगवान के विषय में नहीं जानता। उसी को कह रहे हैं न अयम तम वेद वेद स, ये सारा संसार जिनके विषय में नहीं जानता है पर वे सबको जानते हैं। भगवान को ठीक से नहीं जानने के कारण ही संसार में इतने मतांतर हैं और एक दूसरे में कलह भी है, विवाद भी है। एक दल कहता है कि मैं भगवान को ठीक से जानता हूं, दूसरा दल कहता है कि मैं ठीक से जानता हूं, लेकिन मनु महाराज कहते हैं नयम तम वेद, ये नहीं जानते। संसार के कोई लोग नहीं जानते हैं भगवान को, भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं। नयम तम वेद वेद सह, इस संसार में भगवान के विषय में ठीक ठीक ज्ञान बहुत कम लोगों को प्राप्त है। वास्तव में मनु महाराज कहते हैं कि अयम तम न वेद, अयम मतलब यह विश्व या विश्वस्थित समस्त प्राणी समुदाय, तम न वेद, भगवान को नहीं जानते और भगवान सबको जानते हैं। इसीलिए भगवान के विषय में बहुत बहुत विवाद है और भगवत धारणा के अनुसार, जिसको धर्म कहते हैं, मान्यता के अनुसार अनेक पंथ हो गए हैं। जब पंथ हो गए कोई बात नहीं, जिसको जैसे भगवान की तरफ बढ़ना हो बढ़े, लेकिन एक पंथ दूसरे पंथ से झगड़ा करता है, उसको मारना चाहता है, नहीं तुम ठीक नहीं जानते, है ना। इस संसार में सबसे बड़ा बड़ा जो युद्ध हुआ है धर्म के लिए हुआ है, धर्म के लिए युद्ध हुआ है, हम ठीक जानते हैं तुम ठीक नहीं जानते हो, तुम जीने लायक नहीं हो केवल हम ठीक हैं,
ये ठीक है वो ठीक है,
इतना विवाद है भगवान के विषय, इतना झगड़ा किसी के बारे में नहीं है, और सब क्लियर है, लेकिन भगवान भगवत तत्व जो है इतना दुर्गेय है कि हम अपने अपने समय से लोग झगड़ा करते रहते हैं। और मनु महाराज तो कह रहे हैं कि ये सब नहीं जानते और भगवान इनको जानते हैं। कारण ये है, एक सिद्धांत है कि भाई प्रमाता को प्रमाण नहीं जान सकता है, प्रमाता जैसे सूर्य है या नेत्र आंख, आंख को प्रमाता कहेंगे, और मान लीजिए मैं इस झोली को देख रही, मेरी आंख देख रही है तो इसको प्रमाण कहेंगे, प्रमाण, ये प्रमाण प्रमाता को नहीं देख सकते। जो मैं आंखिन सब देखिए, आंखिन देखी जाए, आंख सबको देखती है, लेकिन आंख को जड़ वस्तु नहीं देख पाती। जैसे मैं इस झोली को देख रहा हूं, आंख देख रही है, लेकिन आंख बंद करते झोली हमारे आंख को नहीं देखेगी, तो खुली हुई आंख रहे तभी ये नहीं देख सकती। इस तरह से भगवान सबको देखते हैं, लेकिन ये जीव भगवान को नहीं देख पाते। जल जगत यह ज्ञान, इस ज्ञान की वे आवृत्ति कर रहे थे। जब वो जप कर रहे थे, मनु महाराज खड़े थे और उनका चित्त बाह्य वृत्ति से लुप्त हो रहा था, भगवान में आविष्ट था, भगवान में आविष्ट था, तो इसलिए असुर लोग ये समझे कि ये सो रहा है, निश्चेष्ट है, तो खाने दौड़े, लेकिन वास्तव में वे समाधिष्ट थे, समाहित आगे कहा गया है, तो ये जप करने में वे समाहित थे। जब भगवान का जप करना हो, ध्यान करना हो, तो बाहर से चित्त हट जाता है, भगवान के रूप चरित्र गुण आदि में लग जाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह लगता है कि इंद्रियां बाहर से छोड़ चुकी है, परंतु कुछ लोग उसकी नकल करते हैं, आंख को जबरदस्ती बंद करके और ऐसे आंखों को दिखाते हैं जैसे लगता है कि अब संसार को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो केवल नाटक भर होता है ना केवल एक नाटक ड्रामा होता है कि चित्त की एकाग्रता का, ऐसा कुछ होता नहीं वहां। परंतु मनु महाराज जो भगवान का जप कर रहे थे तो समाहित होते जा रहे थे, समाहित होते जा रहे थे, ये सब जप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वे भगवान के गुण गाते समय, भगवान का गुण गाते हुए संसार के लोगों के हित का उपदेश कर रहे हैं। आत्मा वास्मिदं विश्वं जबकिंचि जगत्यां जगत् तेन तेन भुंजी था मां गृह कसिद्धनम। यह सारा विश्व आत्मना भगवता आवश्य आवास्य, भगवान सब जगह हैं, सब में हैं, सब में समाये हैं, चेतना के रूप में है और सत्ता के रूप में भी है, वस्तु के रूप में भी है और चेतना के रूप में भी है, भगवान सब जगह हैं। जत किंचित जगत्यान जगत, इस विश्व में जो भी छोटी से छोटी वस्तु है या बड़ी से बड़ी वस्तु है, कोई भूमि, जल, अग्नि, वायु या कोई भी चीज, ये सब भगवान का है, भगवान सब में है, सब में समाये हैं। अतः त्यक्ते न त्यक्ते न भुंजीथा, भगवान के द्वारा त्यक्ते न दत्ते न, भगवान जो दे हमारे लिए जो कोटा बनाए हैं, उन्हीं वस्तुओं को भुंजीथा भोगना चाहिए, अधिक नहीं, अपने कोटा से बाहर नहीं। तेन त्यक्ते न, त्यक्त का दत्त, भगवान ने जो दिया है उसी को भोगना चाहिए, अथवा तेन त्यक्ते न, भगवान के लिए छोड़कर भगवान को अर्पण करने के बाद ही भुंजीता भोक्तव्य, ये भोगना चाहिए। कस्यचिद्धनम् मां गृद्धः कस्यचिद्धनम्, किसी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए, मां गृद्धः गिद्ध नहीं बनना चाहिए, अरे जरा विचार करो, ये उपनिषदकार कह रहे हैं मनु महाराज, कस्य सिद्धन, धन किसका है? इस संसार में इतना धन फैला हुआ है, किसका है? विचार करना चाहिए। पहले उत्तर दे दिया जाए तो चुका कि आत्मावास निदम विश्व, सब कुछ परमात्मा का है, भगवान का है। लेकिन अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो उसी से प्रश्न किया जाता है, कस्य सिद्धन, धन किसका है? ये पृथ्वी कौन लेकर के आया? आज इतना महंगा जमीन बिक रही है, फुट के हिसाब से, गज के हिसाब से इतनी महंगी जमीन, और ये विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक कंकड़ भी लेकर के आया हो यहां पर? जरा विचार कीजिए, ये पृथ्वी कौन लेकर के आया? कोई नहीं। ये सब श्री कृष्ण का है, भगवान का है। कस्य सिद्धन न कस्यचिदपि, ये उत्तर दे रहे थे, किसी का नहीं, सब कुछ भगवान का है। इसीलिए अपने अधिकार से बाहर किसी भी वस्तु का लोभ मत करो, नहीं तो इसका दंड होता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है लेकिन भगवान की दृष्टि में दंडित होता है, उसे भोगना पड़ता है किसका धन है। इस ज्ञान की बात को मनु महाराज समाधि में रट रहे थे, कस्य सिद्धन, किसका धन, किसी का धन, अर्थात सब कुछ भगवान का है। तो भगवान हमारे लिए जो कोटा निश्चित किए हैं उतना ही भोगना चाहिए, उतने से संतोष करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से भगवान को दिए हुए धन से या भगवान को अर्पित किए हुए धन से अपना पालन करता है वो सुखी होता है, इस लोक में भी और परलोक में। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पर बहुत प्रवचन किए थे बड़ा इंग्लैंड में, ईशावास निदम सर्वम जब किंचित जगत्याम जगत। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे ये है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, ये साम्यवाद है। धन किसका है? संसार में धन के लिए हमेशा लड़ाइयां हो रही है, हमेशा लड़ाइयां होती है, हमारा इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना, हमारा ये रिजर्व होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। और इन दोनों दलों को डंडा मारना चाहिए कि है किसका, ये है किसका, क्यों लड़ रहे हो? जो भी है, जिसके पास धन है भी, वो भी सोचे कि धन उसका नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको तो ठीक ही सोचना होगा कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जिसके पास धन है वो भी सोचे कि मेरा नहीं है, ये किसी और का है, तो उसकी इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जिसके पास नहीं है तो उसे ये सोचना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा जितना है उतना ही होना चाहिए। ये विधि है वास्तव में संसार में जीने की, रहने की। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईश्वर का दिया हुआ जो कुछ है उसे संतोष करना चाहिए, वो व्यक्ति सुखी रहता है। जब पश्यति पश्यन्तम्, अगर ये प्रश्न होता है जब भगवान सब जगह हैं, सब में समाये हुए हैं, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उसी का उत्तर मनु महाराज दे रहे हैं, यम न पश्यति पश्यन्तम्, वो तो पश्यंतम देख रहे हैं, उपस्थित हैं, चारों तरफ है, सब जगह, हमारे भीतर है, बाहर है, सब जगह। लेकिन ऐसे पश्यंतम देखने वाले परमात्मा को जम न पश्यति, यह जन जन समुदाय न पश्यति, देख नहीं पाते वे हैं, नहीं देख पाता है तो इसके नजर का दोष है, आंखों का दोष है, लेकिन भगवान है सब जगह। चक्षुर जस न ऋष्यति, भगवान की आंख ऐसी है, उनकी ज्ञान शक्ति ऐसी है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा काल नहीं है जहां उनकी दृष्टि न पहुंचती हो। तीनों काल तक क्या होगा, होने वाला है, हो रहा है, और किसी भी देश में, स्थान में भगवान की दृष्टि सब जगह है और सब काल में है। न ऋष्यति मतलब क्षीण नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई खास देश है जहां उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है, या कोई खास काल है वहां तक उनका दिमाग नहीं पहुंचता है, ऐसी बात नहीं, सर्वत्र है, सब समय है। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपभावत, समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे अनासक्त प्रभु की शरण लो, उपधावत, उनका उपधावन करो, उनकी शरण लो, उपदेश करते हुए जप कर रहे हैं। न जस्याद्यंत मध्यम च स्व परो न अंतरम वही। अब कहते हैं कि वास्तव में भगवान जगत के रूप में है, फिर भी जगत से विलक्षण है। अगर ये कहा जाए कि भगवान जगत के रूप में है तो एक प्रश्न उठेगा, तब तो जगत का आदि देखा जाता है, अंत देखा जाता है, मध्य देखा जाता है, तो भगवान का भी आदि होगा, अंत होगा, तो कहते नहीं नहीं, जस्य आद्यंत न जिन उनकी कोई शुरुआत है न उनका कोई अंत है, और इसलिए मध्यम च और मध्य नहीं है। न भगवान का कोई स्व है न पर है, न कोई उनका अपना है और न पराया है, न उनके कुछ भीतर है न उनके कुछ बाहर है। विश्व समूह जसमान, बल्कि विश्व का आदि अंत मध्य सब उनके कारण है, और जो विश्व से व्यतिरिक्त है, जो विश्व स्वरूप है, तद्रितम परम सत्य है, अव्यभिचारी रूप से तीनों काल में और सर्वत्र जो विद्यमान है, ऐसे महान प्रभु की शरण लो, या हम शरण लेते हैं। स विश्वकायः पुरुहूतैषः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्तेश जन्माद्यदयात्मशक्त्या तां विद्यो दस्य निरीहयास्ते। विश्व ही जिनका शरीर है, विश्वकायः, विश्व ही जिनकी काया है, और पुरुहूत पुरुणी बहुनी नामानी जस, भगवान के बहुत से नाम हैं, पुरुहूत हूतवन नाम, उनको अनेक प्रकार से पुकारा जाता है। इस समय भी संसार में आप देख ही रहते हैं, देख सकते हैं कितने सैकड़ों हजारों नाम हैं और अलग अलग लोग पुकारते हैं, पर पुकारते हैं उसी को, उसी बांसुरी वाले को पुकारते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमसे बात कर रहे थे तो हमने कहा सब तो उसी को पुकारते हैं, उसी को पुकारते हैं। उन्होंने कहा किसको, किसको पुकारते हैं? तो वो कहा अरे मुरली वाले को, और किसको पुकारेंगे, उसके अलावा कौन है? तो मैं खुश हो गया, ठीक है, वो अल्लाह कहिए चाहे गॉड कहिए कुछ भी कहिए, मुरली वाले को ही पुकारते हैं, उनको वही पुकारने जो कि है। और अनेक नाम है, अनेक नाम है भगवान के, ऐसे ब्रज लीला में ही हजारों नाम है उनके, फिर द्वारका लीला है, मथुरा लीला है, और फिर अनंत अवतार हैं, तो नाम तो बहुत हैं। पुरु होता और ईश जो परम ईश्वर है, ईश्वर है परम कृष्ण, सत्य है तीनों काल में एक समान अवस्थित है, स्वयं ज्योति स्वतः ज्ञान संपन्न है, अजह अजन्म जन्म रहित, पुराण पुराने आज के नहीं, पुराण मतलब जीर्ण शीर्ण नहीं, या पुराने मतलब अनादि, अनादिता, जितने विश्व में जितने देवता ये सब नए हैं, लेकिन भगवान अनादि है, पुराण पुरुष है। भक्त से जन्मा दजे आत्मशक्त्या, आत्मशक्त्या अपनी शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से इस विश्व का जन्म पालन प्रलय आदि करते रहते हैं, और यदि शक्ति से ऐसा करते हैं तो क्या शक्ति का अधीन है? नहीं नहीं, तान विद्या उदस्य, अपनी चिन्मय शक्ति से, विद्या शक्ति से इसके प्रभाव को निरस्त करके जो निरीह रहते हैं, निरीह रास्ते सब प्रकार की प्राकृत क्रिया और प्राकृत संकल्प आदि से शून्य रहते हैं, आप जिस प्रभु का वर्णन कर रहे हैं इसमें क्या प्रमाण है कि आप ठीक बोल रहे हैं? तो ये कहते हैं अथाग्रे ऋषय कर्माणि हंते कर्म हेतु, ऋषि सभी लोग कहते हैं, इसीलिए भगवान जो किए हैं उसी के अनुसार ऋषि लोग भी पहले कर्म करते हैं। अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहंत, अग्रे मैंने पहले, पहले ऋषि लोग कर्म करते हैं, किस लिए? अकर्म है तरह, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। यह मानो है पुरुष प्राय अनिहं प्रपद्यते, जो व्यक्ति ठीक से वर्ण धर्म का पालन करता है, आश्रम धर्म का, पहले ठीक से कर्म करता है वही अकर्मता को प्राप्त करता है, मुक्त हो सकता है। ऋषियों का यही वास्तव में पथ रहा है कि पहले वो कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बस गिरुआ कपड़ा रंगाए और घूमने लगे और फिर कुछ काल के बाद विवाह की सोचने लगे। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि अथ अग्रे, अग्रे का तो पहले ऋषय कर्माणि इहंत इहंत सिस्टम के कर्म करते हैं, भगवान ने जो आज्ञा दिया है उसके अनुसार कर्म करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है वो अमीहन प्रपद देते हैं, बाद में वो मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। गीता में भगवान यही बताते हैं, जैसे अर्जुन भी कर्मबंधन से छूटना चाहते थे, वो सोचते थे कि बस युद्ध नहीं करेंगे, एकांत में कहीं कुटिया बनाएंगे, चाहे हिमालय में चले जाएंगे तो हम बस कर्मबंधन से मुक्त हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आदमी ठीक से कर्म न करें, घर द्वार छोड़ दिया, इधर उधर घूमता रहा, तो 54-55 वर्ष में भी जाकर के विवाह की सोचने लगता है ना। इस तरह से ये कौन सा पंथ है, इसलिए अच्छा है कि बेटर पहले ठीक से कर्म करे जो धर्म के अनुसार है तो व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। इहते भगवान ईश्वर नहीं तो प्रभु सजते, भगवान विष्णु ही इस विषय में प्रमाण है। भगवान इहते ये कर्म करते हैं, इतना बड़ा कर्म करते हैं, विश्व की रचना करते हैं, विश्व का संचालन करते हैं, मैनेज करते हैं, इतना बड़ा काम है, लेकिन नहीं तत्र विसर्जते, पर भगवान इसमें फंसते नहीं है। इतना संसार अच्छा रच करके भगवान कभी नहीं सोचते हैं कि अब एक बार बना दिए तो इसका प्रलय नहीं करना चाहिए, उस इसमें फंसते नहीं है। न विसर्जते बिल्कुल असक्त नहीं है, परम मस्ती से आनंद के साथ सृष्टि करते हैं और चलता रहता है सृष्टि। और इसमें अगर कोई रो रहा है, हाहाकार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी अपनी बांसुरी छोड़ करके और रो ले बैठ करके दुनिया में इतने लोग दुखी हैं। उनकी बांसुरी बजती ही रहती है, दुनिया में कुछ भी हो, रचयिता वही है, पालनकर्ता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बिल्कुल न विसर्जते। वैसे भी आप सुनते हैं भगवान विष्णु गर्भोदक साई हैं, चिरोदक साई, कर्णोदक साई, सब समय सोते ही रहते हैं, वैसे दिव्य निद्रा में है, योग निद्रा में, लेकिन बाहर से देखा जाए तो सोने का मतलब होता है निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। बार बार पुकारना पड़ता है कि अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, तब जाकर भगवान आते हैं, नहीं तो उनको कोई चिंता नहीं है। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि जब उनके ही बनाए हुए सृष्टि, उनके पुत्र इतने दुखी हैं, तो भगवान फिर भी कैसे चैन से रहते हैं, वो क्यों आनंद में रहते हैं, तो क्या वे भी रोया करें क्या, ये लोग चाहते हैं। जैसे हमको दुख है, हमारा बाप अगर रोता है तो भगवान भी रोए, इस तरह अपनी धारणा का आरोप करना। भगवान ऐसे हैं जिनमें दुख हो ही नहीं सकता है, वो चाहे कि थोड़ा दुखी हो जाए फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि वो सुखमय है, आनंद घना, दुखी हो ही नहीं सकते, और इतना आनंदमय है कि वे अन्य वस्तुओं में कभी फंस ही नहीं सकते, कभी अशक्ति नहीं हो सकती। बार बार भागवत में इस वाक्य को कहा गया है, भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन तत्मा विसर्जित नहीं है। यहां तो एक छोटी सी झोपड़ी में भी आदमी इतना आसक्त हो जाता है, देखते हैं संसार में छोटी सी झोपड़ी की बात क्या हो, मैं कथा कहता हूं, राजा भर्तृहरि और एक कौन राजा थे गोपीचंद, जो एक खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे थे। ये संसार की दशा है, तो मनु महाराज ज्ञान दे रहे हैं, आत्मलाभ है न पूर्णार्थ नाम सिद्धंत ये विचार, भगवान आत्मलाभ से अपने स्वरूप के आनंद से और अपने भक्तों के आनंद से बिल्कुल परिपूर्ण है पूर्णार्थ। और ये नुत्तम जो इस तरह भगवान विष्णु का अनुगमन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो वे भी कभी न सिद्धंति, वे कभी भी दुख में नहीं पड़ते। जो भगवान को अब जीवन का आदर्श मान कर उनके अनुसार चलते हैं, वो दुखी नहीं है। तमीह मानम निरहंकृतम बुधम निराशिषम पूर्ण मनन्य चोदितम नृण शिक्षयम तम निजवात्म संस्थितम प्रभु प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। इस प्रकार जो संपूर्ण विश्व के रचयिता होकर के भी कभी भी जिनमें अहम भाव नहीं होता है, मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं, और जो पूर्ण ज्ञानी हैं, जिनमें कोई कामना नहीं है, जो सब तरह से पूर्ण है, और जिन्हें प्रेरित करने वाला कोई दूसरा नहीं, जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं, जो परम ईश्वर है, वे प्रभु मनुष्यों को शिक्षा देते हुए कभी कभी धर्म का आचरण करते देखे जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप में श्री राम के रूप में वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते देखे जाते हैं। अपने पिता की आज्ञा से वन में जाना, धर्म का पालन करके दिखाना, और कई प्रकार से भगवान ने शासन किया, राज्य विस्तार किया है। इसको नृण शिक्षण तब नरावतारम मर्त शिक्षण, मर्त्यावतारम की है मर्त शिक्षण। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से धर्मों का आचरण करते हैं। तो इस तरह से प्रभु जो स्वयं वेद शास्त्र बनाए हैं और वेद शास्त्र का आचरण करके दिखाते हैं, समस्त धर्मों की रक्षा करते हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। इस तरह से मनु महाराज जप कर रहे थे एक पैर से खड़े होकर के, इति मंत्रोपनिषदम व्याहरंतम समाहितम दृष्ट्वा सुरा जातधाना जगभूम भद्रवंशुधा। तो उस समय देखे कुछ राक्षस मनु महाराज, तो राक्षस जैसे गाय का आहार है घास और गिद्ध का आहार है कोई मांस, बाघ का आहार है मांस, ऐसे राक्षस लोग मनुष्य को खाते ही रहते हैं। तो देखे कि एक मनुष्य ऐसे सो रहा है खड़े खड़े, वो तो समाधि में थे, तो उनको खाने के लिए चारों तरफ से दौड़े। अभ्यद्रवन क्षुधा, विद्रोह से नहीं, भूख से व्याकुल होकर के खाने दौड़े। ये राक्षसों का स्वभाव है खाना। इस तरह की विपत्ति किसी भक्त पर आ सकती है, बेचारा भजन कर रहा है और उसी समय राक्षस खाने के लिए दौड़े, एक नहीं अनेक राक्षस। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तांस तथा वसतान विक्षय यज्ञ सर्वगतो हरि जामय परिवृतो देवैर हत्वा शासत त्रिविष्ट पर। जब भगवान यज्ञ ने देखा जो सब जगह है कि हमारे भक्त मनु को इस तरह से राक्षस खाने के लिए दौड़े, तो सर्वत्र अवस्थित भगवान तुरंत ही जाम नामक देवताओं के साथ राक्षसों का वध किए, और इन्हीं देवताओं के साथ मिलकर के श्री भगवान तीनों जगत का पालन किए, शासन किए। इस मनोन्तर में भगवान यज्ञ भी स्वयं ही इंद्र पद पर भी थे, मनोन्तरावतार भी और इंद्र पद पर भी स्वयं रहे। इस तरह से यज्ञ भगवान ने तीनों जगत का पालन किया और अपने भक्त मनु महाराज की रक्षा किया। ये पहले मनोन्तर की छोटी सी कथा भी थी, अब दूसरे मनोन्तर की सुनिए। स्वारोचिशो द्वितीय स्तु मनु अर्ग्ने सुत भवत। दूसरे मनु हुए अग्नि के पुत्र स्वारोचिस, और दूसरा मनवंतर और द्युमत सुसेन रोचिस में प्रमुख स्तमगा, और उनके पुत्र हुए द्युमत सुसेन रोचिसमान इत्यादि, ये जिनमें प्रमुख थे ऐसे। और तत्रेंद्र रोचनस्ता से उस मनवंतर द्वितीय मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन, और देवता तुषिता आदि हुए और ऊर्ज स्तंभ आदि सप्तर्षि हुए जो वेद के विद्वान। और इस द्वितीय मन्वंतर में वेद सीरा एक ऋषि हुए जिनकी पत्नी का नाम तुषिता था, उसके गर्भ से भगवान जन्म लिए, उनका नाम हुआ विभु। तो दूसरे मन्वंतर में, सर्वोच्च मन्वंतर में भगवान का विभु नाम का अवतार हुआ। इस अवतार में भगवान ने एक्स्ट्रा आर्डिनरी कर्म किया, अद्भुत कर्म किया। वे स्वयं ही कुमार अवस्था से ही बाल ब्रह्मचारी रह गए भगवान और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए। तो भगवान विभु के आचरण की का अनुगमन किए 88,000 लोग जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। और अवतार में भगवान और भी लीला करते थे, लेकिन इस अवतार में उन्होंने ये कार्य किया। अष्टशीति सहस्रनाड़ी मुनयो ये धृत व्रता अनुशिक्षण व्रतम तसे कौमार ब्रह्मचारी। भगवान का व्रत सब सीखे। क्या व्रत था भगवान का? कौमार ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी ले रह गए। तो उनके अनुसार 88,000 मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। दूसरा मन्वंतर में भगवान के लीला। तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रत सुतो मनु। तीसरे मन्वंतर में प्रियव्रत के पुत्र उत्तम मनु हुए और उनके पवन संजय यज्ञ होत्रादि पुत्र हुए। और वशिष्ठ जी के 7 पुत्र प्रमद आदि इस मन्वंतर में सप्तर्षि हुए। और सत्या वेद सत्ता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यदेव। सत्या सत्य वेद श्रुत भद्रा इत्यादि देवता हुए और इंद्र का नाम हुआ सत्यजीत। धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान अवतार लिए इस तृतीय मन्वंतर में, उनका नाम हुआ सत्यसेन और उनके सत्यव्रत आदि पुत्र हुए। इस अवतार में भगवान ने यक्ष और राक्षसों का वध किया। मुख्य रूप से यक्ष राक्षस का वध करना भी जनता का पालन है। जैसे आतंकवादियों को मारना जनता का पालन है, अपने आप में यह परफेक्ट है। वास्तव में जो दूसरों को मारते हैं तो उनको मार देने से जनता का पालन अपने आप सिद्ध होता है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव काम करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ समाज में उपद्रव करने वाले लोग होते हैं, जैसे टेररिस्ट आतंकवादी, जो जनता को सताएंगे ही, उनका स्वभाव है कि जनता को सताएंगे। तो ऐसे लोगों का वध कर देना ही जनता की रक्षा है। अन्यथा जनता की रक्षा का प्रयास कीजिए और ऐसे टेररिस्ट जीवित रहे तो वे तो अनेक तरह से तबाह करते रहेंगे, क्या कोई पालन कर पाएगा? इसलिए इस अवतार में, तृतीय मन्वंतर में भगवान ने यो नृत व्रत दुह शीलन असतो यक्ष राक्षसान भूत दुहो भूत गणास्तो अधित सत्यजीत सखा। सत्यजीत इंद्र के सखा बन करके भगवान इस अवतार में यक्ष और राक्षसों का वध किए। जो अनृत व्रत दुःशीलन असत। अनृत व्रत, जिनका व्रत ही था गलत काम करना, असत्य, और जिनका दुःशील, यह भी एक व्रत है। कुछ लोग व्रत दुःशील व्रत या अनृत व्रत, कुछ है दूषित लोगों का वास्तव में ये व्रत ही है कि दूसरे को मारा जाए, दूसरे को मारा जाए। जैसे अभी कुछ महीने पहले बंबई के ट्रेन में जो कुछ भी हुआ था, ये कुछ दुष्टों का स्वभाव है कुछ प्राणियों को पीड़ा देना, मारना। कई सौ लोग मर गए, कितने घबराए हुए, अंग भंग हुआ, तो इसको देख करके उन्हें सुख होता है। जैसे मृगारी था, उसको अधमरे पशुओं को देख करके सुख होता था। और धमरा जीव जद धड़ फड़ करे तभी तो आनंद बढ़े अंतरे, वो नारद जी से कहता। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अमृत व्रत दुःशीलन असतः यक्ष राक्षस, जिनका व्रत ही है दुःशील, और अनृत वेद विरुद्ध करना। तो ऐसे जक्ष राक्षसों का भगवान ने वध किया, वध करने में भगवान ने साथ दिया इंद्र का। तो यह तृतीय मनवंतर की कथा है। और चौथे मनवंतर की कथा सुनिए, चतुर्थ उत्तम भ्राता। तो चौथे जो मनु हुए वे उत्तम के भाई थे, तीसरा मनवंतर था उसका नाम था उत्तम, उत्तम मनवंतर, चौथा मनवंतर तामस मनवंतर हुआ। ये तामस है उत्तम के भाई थे, प्रियव्रत महाराज के पुत्र, और इनके पृथु ख्याति नर केतु इत्यादि 10 पुत्र हुए, और सत्यक हरि वीर देव ये सब देवता हुए, और त्रिशिक ईश्वर इंद्र का नाम हुआ त्रिशिक, और ज्योतिर्धामादि सप्त ऋषि हुए, और देवा वैधृत नाम विधृत स्तनया नृप नष्ट काले निजय वेदा दुर्भिता स्वयं तेजस। देवा वैधृत नाम विधृत स्तनया नृप नष्ट काले निजय वेदा दुर्भिता स्वयं तेजस। ये ज्योतिर्धाम आदि और ये वैधृति के पुत्र आदि ये जो हुए, तो ये सब समय के अनुसार नष्ट हुए, वेद को धारण किए। इस संसार में वेद शास्त्र की परंपरा भी चालू रखना बहुत एक महत्वपूर्ण काम है। शास्त्र रहे, लोगों को पढ़ने सुनने को मिले, तो विधृति के पुत्र वेद शास्त्र को धारण किए। इस चौथे मनवंतर में भगवान ने हरिमेधा के पुत्र हरिणी के गर्भ से जन्म दिया। नाम हरिणी था, हरिणी कोई पशु नहीं, इनका नाम हुआ हरि। हरि रीत्या हेतो जन गजेन्द्र मोचितो ग्रहार। भगवान हरि के गर्भ से जन्म लिए इसलिए इनका नाम हरि हुआ। ये चौथे मनवंतर के मनवंतर अवतार हरि, और इसलिए भी इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया हरि। गजेन्द्र के दुख को हरे भगवान, गजेन्द्र के आरती का हरण किए, इसलिए भी इनका नाम हरि प्रसिद्ध हुआ। हरि रीत्या हितो जनु गजेन्द्र मोचितो ग्रह। इन्होंने ग्रह से गजेन्द्र को मुक्त किया और सुप्रसिद्ध नाम हुआ हरि। जब सुखदेव गोस्वामी चौथे मनवंतर की कथा कहे तब महाराज परीक्षित फिर प्रश्न किए, ऐसे प्रश्न हुआ था उसका तुरंत प्रश्न कर रहे बाद राय एतत्ते श्रोतुम इच्छा महे वयम हरिर्जथा गजपतिम ग्रह ग्रस्तम अमुमुचत। हे बादरायण, हे बादरायण के पुत्र, हे वेदव्यास देव के पुत्र, हम आपसे उस कथा को सुनना चाहते हैं कि हरिर्जथा गजपतिम ग्रह ग्रस्तम अमुमुचत, ग्रह से ग्रस्त गजेन्द्र की किस प्रकार भगवान ने रक्षा की, कृपया हमें सुनाइए, हम इसको सुनना चाहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान लीला करते हैं, तो चौथे मनवंतर में गजेन्द्र की रक्षा की है। यह लाखों लीलाओं में से एक लीला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चौथे मनवंतर में बस एक ही लीला की है। 71 चतुर्युग में बस एक गजेन्द्र की रक्षा कर दी, इतनी ही लीला हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन कितना आदमी कह सकता है, सुनने वाले के पास और कहने वाले के पास भी समय का अभाव था, तो वो एक लीला कह रहे हैं, तो उसको उसकी व्याख्या कराना चाहते हैं। तो पांचवें मनवंतर में रैवत नाम का अवतार मनवंतर हुआ। तो पांचवें मनवंतर में भगवान ने शुभ्र की पत्नी विकुंठा के गर्भ से जन्म लिया और वैकुंठ नामक लोक बसाया इसी प्राकृत जगत में लक्ष्मी जी का प्रिय करने के लिए। कभी कभी किसी पत्नी को इच्छा होती है कि हमारे लिए अलग भवन बनाया जाए किसी रानी के, तो राजा बना देता है। तो भगवान भी अपनी प्रिया को बहुत मान देते हैं, लक्ष्मी जी के कहने से इस प्राकृत जगत को उन्होंने एक वैकुंठ बनवा दिया, उनका नाम हुआ वैकुंठ, विकुंठा के गर्भ से जन्म लिया। और छठे मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ जिनका नाम हुआ अजित, देव संभूति के गर्भ से जन्म लिए अजित। और अजित भगवान ने कूर्म रूप से मंदराचल को धारण किया, समुद्र मंथन किया और अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया। सातवें मन्वंतर में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने बलि महाराज से तीन पग भूमि मांगा और उन्हें बांधा भी। ये इसी मन्वंतर की एक कथा। तो चौथे मन्वंतर में गजेंद्र की रक्षा भगवान ने किया। महाराज परीक्षित स्पेशल सुनना चाहते हैं। तत्कथा सुमह पुण्यम धन्यम स्वस्तेनम शुभम जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। तत्कथा सुमहत्पुण्यम, समस्त कथाओं में तत्कथा सुमहत्पुण्यम, कभी कभी ऐसे लगाया जाता है तत्कथा सुमहत्पुण्यम, समस्त कथाओं में वह कथा महत्पुण्यमय है, धन्यम जसस्यम शुभम जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। जिन जिन कथाओं में भगवान हरि उत्तम श्लोक गीयते, उनकी प्रशंसा होती है, उनका गुणगान किया जाता है, वो कथाओं में सबसे श्रेष्ठ कथा अथवा तत् कथा सुमहत्पुण्य, वह कथा सुमहत्पुण्य है, परम पावन। वास्तव में पुण्य कहें विशेषण धन्यम स्वस्तेनम शुभम तीनों है, ऐसा श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं। इस पुण्यम का विशेषण है धन्यम स्वस्तेनम शुभम। धन्यम का अर्थ है भगवान की कथा, खास करके गजेंद्र उद्धार की और सभी, लेकिन इस प्रसंग पर धन्यम, धन्य का अर्थ है धनावह, धन बढ़ाने वाली कथा। जो कोई व्यक्ति इस कथा को कहता है, ये सुनता है, चिंतन करता है, तो उसका धन बढ़ता है। यहां धन का अर्थ सब प्रकार का धन है। सांसारिक दृष्टि से रुपया पैसा की प्राप्ति होना ये तो धन है ही, लेकिन और भी अनेक धन है। ये ज्ञान आदि भी परम धन है, भगवान की भक्ति करना यह भी परम धन है। तो इस कथा को सुनने और कहने से धन की प्राप्ति होती है। स्वस्तेनम, उस व्यक्ति की शोभन सत्ता होती है, बड़े बड़े रोग आदि मिट जाते हैं, वो सफल होता है व्यक्ति इस कथा को सुनने मात्र से। स्वस्तेनम, ठीक ढंग से जीवन धारण करता है और आगे शुभ गति होती है, और शुभम, अनेक आशीर्वाद उसे प्राप्त होते हैं, अनेक शुभ इच्छाएं पूरी होती हैं उसकी। वैसे तो जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, जिस कथा में भी, जिस बातचीत में भी यदि भगवान हरि उत्तम श्लोक गीयते, बार बार सेंट्रल प्वाइंट के रूप में वे आते हैं कथा में, तो उस कथा की भी ये महिमा है। और बाकी जिस कथा में टोटल वही गीयते, तब तो कहना ही क्या है, शुद्ध भगवान की ही कथा हो तब तो कहना ही क्या। यदि संसारिक कथाओं में भी यदि भगवान सेंट्रल प्वाइंट पर आ जाते हैं और कुछ फालतू बातें भी होती, तब भी उस कथा की इतनी महिमा है। तो ये तो गजेंद्र उद्धार की कथा साक्षात भगवान पर से ही संबंधित कथा है, इसलिए हम इसको सुनना चाहते हैं। तब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित एवं सतु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। अशुद्ध गोस्वामी कहते हैं, हे विप्रः, हे शौनकादि ब्राह्मणों, जब इस प्रकार परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव गोस्वामी को कथा कहने के लिए प्रेरित किया, कथा से चोदित प्रेरित, तब उन मुनियों की सभा में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का अभिनंदन करते हुए और गजेंद्र मोक्ष की कथा कहना प्रारंभ होती है। इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, महाराज परीक्षित की क्या दशा है, कथम भूता परीक्षिता पृष्ठ तो प्रायोपविष्ट, जो प्रायोपविष्ट थे, प्राय मतलब अनशन व्रत, जो अनशन व्रत में बैठे थे, जो खाए पिए नहीं थे, तो अन्न की और पानी की जिनको कोई इच्छा नहीं थी, पर भगवत कथा के लिए इस तरह तरस रहे थे, अनशन व्रत में बैठे थे और भगवान की कथा के लिए इतनी उनकी इच्छा थी, उत्कट लालसा थी। उनके द्वारा प्रेरित हुए सुखदेव गोस्वामी किसके द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए? जो व्यक्ति कई दिन से खाया नहीं है, पिया नहीं है, क्या महाराज परीक्षित की ऊंचाई है वास्तव में भक्ति की? इन सब शब्दों पर विचार करने पर तब पता चलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत के अर्थ का स्वागत, अनशन पर बैठे हुए परीक्षित के द्वारा सुखदेव गोस्वामी प्रेरित हुए कथा के लिए। तब सुखदेव गोस्वामी मुनीनाम सदसी, उन मुनियों की सभा में जिसमें संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग बैठे थे, और श्रीमता सम महाराज परीक्षित के प्रश्न को और सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को सुनने के लिए सावधान थे, उन लोगों की सभा में सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्नता से, मुदा आनंद चित्त से इस कथा को कहना प्रारंभ किए, गजेंद्र उद्धार की कथा को। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध का पहला अध्याय पूरा हुआ और कल से गजेंद्र उद्धार की कथा प्रारंभ की जाएगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।